मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 22 जुलाई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं जर्मनी के बारे में आप सबसे कुछ बातें करना चाहूंगा, जिसकी चर्चा मैंने कल की थी, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। एक मेरा छोटा सा सजेशन है, न्यूज में आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं इंडियाज आइडिया सबमिट को संबोधित करने जा रहे हैं, आज संबोधित करेंगे, और हो सकता है कि जब तक आप इस ऑडियो को सुने तब तक वो संबोधित भी कर चुके हों, लेकिन कोई बात नहीं, आजकल आप उस युग में रह रहे हैं जहां कोई भी चीज खत्म नहीं होती है, मौजूद रहती है, यानी कि अगर उन्होंने संबोधित कर भी दिया होगा तो उसे आप फिर से सुन सकते हैं, वो कहीं ना कहीं मौजूद होगी। मेरा सजेशन यह है मित्रों कि आप उनके इस संबोधन को जरूर सुनिएगा, और खासकर इसलिए कि ये जो संबोधन है ये भारत और अमेरिका के परस्पर संबंधों के ऊपर है, और विषय भी है कि कैसे बेहतर भविष्य का निर्माण किया जाए। तो जब बेहतर भविष्य के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी बात करेंगे तो डेफिनेटली उसके दो एंगल होने चाहिए जो मैं एक प्रेडिक्ट कर सकता हूं। एक तो होगा कि भारत और अमेरिका कैसे अपने संबंधों को और बेहतर बना करके दुनिया के लिए काम कर सकते हैं, और दूसरा ये होगा कि कैसे दुनिया अपने कामों में परिवर्तन ला करके या कौन से तौर तरीके अपनाए जिसकी वजह से कोई खासकर कोरोना के बाद एक बेहतर दुनिया का निर्माण हो सके। चूंकि भारत और अमेरिका के संबंधों पर इस पर ज्यादा जोर है, और अमेरिका भारत के लिए भी कितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है, और साथ ही साथ भारत भी अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है, मित्रों आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इसमें आपको हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छे लेटेस्ट पॉइंट्स मिले, हो सकता है नहीं बल्कि मिलेंगे ही। देखिए, सिविल सर्विस की अगर आप ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे हैं, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी जो सबसे बड़ी चुनौती है खासकर जनरल स्टडीज के पेपर के लिए वो ये है कि आप कैसे अपने आप को बिल्कुल अपडेट रखते हैं। आपको लगातार अपने को अद्यतन बनाकर रखना होगा, और आप अद्यतन बनाएंगे कैसे, आप इसी तरह से अद्यतन बनाएंगे जैसा तरीका भी मैंने आपको बताया। देखिए, आप सुन लेंगे, सुन करके छोड़ देंगे, बात बनेगी नहीं, सुनने के बाद कम से कम कुछ तो एक दो पॉइंट आप नोट कीजिए बकायदे, क्योंकि आप सुन नहीं रहे हैं, आप कोई धार्मिक प्रवचन नहीं सुन रहे हैं, या आप कोई किसी हास्य कवि सम्मेलन में नहीं गए हुए हैं, है ना, आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करने की दृष्टि से ही उसे सुन रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए और एक दो पॉइंट जो भी महत्वपूर्ण लगे उसे नोट कर लें। मैंने अभी अद्यतन की बात की, तो दोस्तों इसी अद्यतन के तहत मैं फिर से एक महत्वपूर्ण घटना की चर्चा करना चाहूंगा, और वो ये है कि जो संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल ग्रह पर यान भेजा है, मार्स पर यान भेजा है, सोच करके देखिए, यान भेजा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि खाड़ी देशों का यह पहला ऐसा अभियान है जो भेजा गया है, और वहां जाने के बाद वो अगले साल आप यूं कह लीजिए फरवरी तक शायद वहां पहुंच जाए, और पहुंचने के बाद फिर वो वहां के जो डेटाज होंगे वो इकट्ठे करेगा। ठीक है, चलिए ये हो रहा है। अब आप देखिए कि एक घटना घटित हो गई। आप अपने जब सिविल सर्विस के सिलेबस को देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन वाले में, तो उसमें दिया हुआ है कि आपको ऐसे टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है जिनका संबंध भारत से हो। ठीक है, अब ये जो यूएई ने भेज दिया है अपना मिशन, तो अब इसका भारत से क्या संबंध हो सकता है? भारत से संबंध यह हो सकता है कि जो यान भेजा गया है, जो प्रक्षेपित किया गया है, ये जापान से किया गया है, और आपको मालूम है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत कितना आगे है, भारत बहुत ज्यादा आगे है। ठीक है, इसका मतलब है कि आगे के लिए जो खाड़ी देश हैं, जब अगर कुछ ऐसा अभियान भेजते हैं, करते हैं, तो भारत से वो साझा कर सकते हैं, है ना, भारत उनकी मदद कर सकता है। अब आप देखिए कि एक नया पॉइंट ऐड हो गया, भारत संयुक्त अरब अमीरात के संबंध या भारत के खाड़ी देशों के साथ संबंध की संभावना, तो यहां आपको एक संभावना दिखाई दे रही है। दूसरा कि अभी तक जो खाड़ी देश थे इनकी जो अर्थव्यवस्था थी मूलतः ऑयल पर डिपेंड करती थी, अब आप देख रहे हैं कि ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट में कितना कम रेट चल रहा है, फिर जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो वो अब सतर्क हो रहे हैं कि अब ये ज्यादा दिन तक चलने वाली बात नहीं है, तो अब हमें दूसरे तरीके अपनाने होंगे। तो जो भी थोड़े से सतर्क राष्ट्र हैं जैसे संयुक्त अरब अमीरात है, तो अब उसने टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट करना शुरू किया है कि हम अपने यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दें, अपने यहां नेटवर्क को बढ़ाएं इस तरीके से, और फिर आपको लगेगा कि अगर वो अपने यहाँ टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाह रहा है, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, तो क्या भारत उसकी मदद नहीं कर सकता? भारत के साथ उसके संबंध और बेहतर नहीं हो सकते? क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो यह है, उसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो है ही, दूसरी यह है कि दूसरों की तुलना में वो बहुत सस्ता है भारत। अगर भारत से प्रक्षेपित करते हैं तो उनको बहुत कम पैसा देना पड़ेगा, तो भारत की यहां आपको बढ़ती हुई ताकत दिखाई देगी। अब आप देखिए कि तीसरा पॉइंट आप कैसे इसको अपडेट करेंगे। थर्ड पॉइंट के तहत आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अभी कुछ ही दिनों पहले, हमने 3-4 दिन पहले ही शायद बात की होगी कि किस तरीके से भारत और ईरान के संबंधों में अब चीन की घुसपैठ हो रही है। चाबहार बंदरगाह को लेकर के तो भारत और उसके संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन अब वो रेलवे लाइन बिछाने को लेकर के, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी, पता नहीं वो क्या स्थिति होगी। चीन ने घुसपैठ करना शुरू कर दिया है, ईरान पता नहीं क्या सोच रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें अभी से सतर्क हो जाना चाहिए, क्षतिपूर्ति के रूप में खाड़ी देशों के साथ अपने संबंध और ज्यादा मजबूत बनाने चाहिए। वैसे यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारे जितने भी खाड़ी देश में काम करने वाले लोग हैं सबसे ज्यादा यूएई में ही हैं, तो उस दृष्टि से हमारे पास एक अच्छी पृष्ठभूमि है, एक मजबूत न्यू है। लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पॉइंट नोट कर लेने चाहिए, तब जाकर के जो आपका आंसर है वह इस तरीके का बन पाएगा कि जो एग्जामिनर है वो आपको मार्क्स देने के लिए विवश हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और सच पूछिए तो मुझे इस बात का संतोष है, एकेडमी को इस बात का बहुत बड़ा संतोष है कि कम से कम डेली ऑडियो लेक्चर के जरिए लगातार हम लोग आप सबको जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं अपडेट करने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, ऑनलाइन शिक्षा में अचानक इजाफा, राइट, ये बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा हुआ लेख है और बहुत अच्छा लेख अजीत बालकृष्णन जी ने लिखा है। यहां मैं आपको इंस्ट्रक्शन ये देना चाहूंगा पूरी विनम्रता के साथ कि इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है इसका भविष्य क्या है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होने पर क्या होगा नहीं होने पर क्या होगा, इसे आप पढ़ें और पढ़ने के बाद जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे दोनों साइड के लिए, होने में क्या फायदा है और होने में इसकी क्या सीमाएं हैं, उन पॉइंट्स को आप अलग अलग नोट कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है, तो इसे आप देख लेंगे। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। कल मैंने आपसे रुचिर शर्मा जी के आर्टिकल की चर्चा की थी और कहा था कि आप सब इसे ध्यान से पढ़ें, और ध्यान से पढ़ने के बाद जो बातें आपको महत्वपूर्ण मालूम हों उन्हें आप नोट भी कर लें। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने ऐसा किया भी हो, और आज मेरी बातचीत के माध्यम से आपने जो नोट किए हैं वो कितने सही हैं, उसमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट गई, अगर छूटी हों तो मुझे लगता है कि आप अपने को इवेल्युएट कर सकते हैं उसके आधार पर। देखिए इसमें उन्होंने क्या बताया है रुचिर शर्मा जी ने, उन्होंने बताया कि दुनिया की दो बड़ी शक्तियां थी, अमेरिका और चीन, थी नहीं मतलब अभी भी हैं, कोरोना में ये दोनों ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही हैं, राइट, दोनों उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, दोनों की जगह बेरोजगारी की दर बहुत बढ़ रही है, और चीन का तो जो इंटरनेशनल इमेज ही है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अब वो कल्पना करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में दुनिया के वो कौन से देश हैं जो विश्व शक्ति के रूप में उभरेंगे, तो उसमें उन्होंने एक जर्मनी की बात कही है, तो जर्मनी के बारे में तो उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि जर्मनी एक विश्व अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सकता है, लेकिन उन्होंने इशारे के तौर पर एक दो नाम और लिए हैं, पता नहीं वो आपकी पकड़ में आए हैं कि नहीं। एक उन्होंने वियतनाम का नाम लिया है, वियतनाम की खासकर निर्यात की शक्ति के रूप में वियतनाम से बहुत अच्छी उम्मीद की जा सकती है, छोटा सा देश वियतनाम। अब आपके दिमाग में बस यही तथ्य दर्ज हो जाए, आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर उन्होंने रूस का भी नाम लिया है कि रूस खासकर अपनी अर्थव्यवस्था के पर, अर्थव्यवस्था पर जो एक वित्तीय दबाव होता है, जो प्रेशर होता है ना, फाइनेंशियल प्रेशर होता है, उस फाइनेंशियल प्रेशर को खत्म करने के लिए जबरदस्त रूप से काम कर रहा है, तो वहां भी वो एक संभावना देख रहे हैं। इसके ठीक विपरीत आप देखिए कि चीन और अमेरिका जो अभी विश्व की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वित्तीय शक्तियां हैं वो बहुत अधिक वित्तीय दबाव में है, और कोरोना ने उनको और ज्यादा वित्तीय दबाव में ला दिया है, और चीन तो भविष्य में शायद और ज्यादा दबाव में आता चला जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने दो राष्ट्र बता दिए हैं, वियतनाम और रूस, कि ये भी संभावित राष्ट्र हो सकते हैं। फिर उन्होंने जर्मनी के बारे में बहुत विस्तार से बताया है, और विस्तार से बताने के दौरान उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जैसे ही कोरोना का मामला आया जर्मनी ने उसे कैसे हैंडल किया। तो ठीक है, चलिए जब हम जर्मनी ने कैसे हैंडल किया इसकी बात करते हैं, तो उसके दो पक्ष हो जाते हैं। पहला तो यह है कि कोरोना व्यक्ति के स्वास्थ्य को ज्यादा नुकसान न पहुंचा पाए, उसका एक पक्ष है ना कि अपने लोगों की कैसे रक्षा की जाए। उसका दूसरा पक्ष जो यहां ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है कि अर्थव्यवस्था को कैसे बचाया जाए। जो संकट है वो अर्थव्यवस्था के सामने है, क्योंकि सभी जगह लॉकडाउन हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि जब लॉकडाउन हो रहा है तो वही वित्तीय दबाव क्रिएट कर रही है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, मुझे लगता है कि वो जो अच्छे पॉइंट्स हैं जो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और जब कभी भी इस पर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो बकायदे जर्मनी ने क्या कदम उठाए हैं आप रेफरेंस देते हुए उनका उल्लेख कर सकते हैं। जैसे देखिए, उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द भी उसके लिए इस्तेमाल किया है, कुर्जई बैठ। आप इस शब्द को नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, कुर्जई बैठ। तो ये कुर्जई बैठ क्या है? देखिए, नौकरियां जा रही थी तो उन्होंने एक काम किया कि जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं, तो उद्योग के मालिक हैं, मैनेजमेंट है, इसमें उन्होंने बॉस शब्द का इस्तेमाल किया है, और फिर जो यूनियन है, कर्मचारियों की यूनियन है, उन्होंने आपस में बातचीत की, और बातचीत करने के बाद एक रास्ता निकाला कि ऐसा करते हैं कि जो काम के घंटे हैं उन्हें कम कर देते हैं, काम के घंटे कम कर देते हैं, और जो इन्हें सैलरी दी जाएगी, जो मजदूरी दी जाएगी, उस मजदूरी को कम कर देते हैं, तो प्रोडक्शन भी होता रहेगा, बेरोजगारी भी नहीं होगी, और काम भी चलता रहेगा, अर्थव्यवस्था भी ध्वस्त नहीं होगी। तो इस तरीके से उन्होंने रास्ता निकाल लिया, और इस समय जो पैसा दिया जाएगा उसका बहुत कुछ हिस्सा सरकार देगी, और जो जर्मन की सरकार है, खासकर जब अभी जो वहां की चांसलर है मर्केल, वो मितव्ययता पर बहुत ज्यादा जोर देती है कि हमें कम से कम खर्च करना है, कम से कम खर्च करना है। देखिए, जब आप कम से कम खर्च करते हैं तो क्या होता है? कम से कम जब हम खर्च करते हैं तो बचत होती है, बचत होती है तो क्या होता है? बचत होती है तो आपकी कैपिटल बनती है ना। जब कैपिटल आपके पास है तो आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। भारत का संकट अभी क्या है कि हमारे पास बचत बहुत ज्यादा नहीं है, या यूं कह लीजिए कि प्रोडक्शन ही नहीं है कि हम कैपिटल जनरेट कर सके, तो हमें बाहर से कैपिटल चाहिए। जब हम बाहर से कैपिटल लेंगे तो हम दबाव में आएंगे, क्योंकि बाहर से जो पूंजी आएगी वो अपनी नीतियां लेकर के भी आती है, ऐसा नहीं है, वो हमारे ऊपर दबाव डालेगी। तो इसने मितव्ययता पर जोर दिया और आज उसकी बहुत बड़ी ताकत बन गई है। इसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने परिवारों को सीधे पैसे दिए, टैक्स में कटौती की, बिजनेस का लोन दिया, मतलब सीधे लोगों के हाथ में पैसा दिया, और जीडीपी का 55%, भारत ने 20% किया है अपने जीडीपी का, 10%, और जीडीपी का 10% मतलब 20 लाख रुपए है, मैं 20 कह गया, हम जो अपनी जीडीपी का जो आप यूं कह लीजिए कि पैसा दे भी रहे हैं उसको अलग अलग तरीके से दे रहे हैं, वो सीधे लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है। इस पर भी आपने कुछ ऐसी समीक्षाएं पढ़ी होंगी, ऐसे आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि वो बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा हमारी सब अर्थव्यवस्था में, बहुत ज्यादा वो डिमांड जनरेट नहीं कर पाएगा। लेकिन इन्होंने डिमांड जनरेट करने के लिए क्या कर दिया? परिवारों को सीधे पैसा दे दिया, सीधे टैक्स में कटौती कर दी, सीधे बिजनेस लोन दिया, और दूसरी तरह की मदद दी, और उससे अर्थव्यवस्था को मदद मिल गई, और जो उनके टोटल जीडीपी का 55% होता है। तो दोस्तों, ये उन्होंने तरीके अपनाए, और तरीके अपनाने के बाद जो अब उनकी अर्थव्यवस्था दिखाई दे रही है उसी में भविष्य की एक शक्ति बनने की संभावना रुचिर शर्मा देख रहे हैं। दोस्तों, इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं कि वो किस तरीके से अब अपने यहां बदलाव लाने जा रहा है, उसके बारे में समय को देखते हुए मैं बात नहीं कर रहा हूं। अगर उसके बारे में आपको जानना है तो आर्टिकल एक बार फिर से पढ़ लीजिए, उसके लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट के दो पैराग्राफ में इसकी चर्चा उन्होंने की है। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इनमें से एक मित्र हैं हार्दिक प्रजापति गुजरात से, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।